ஓம் சாந்தி. ஆப் சபி பாபா கே சனேஹி யக் ரக்ஷக் பாய் விசேஷ் தாதிஜி கே ஸ்மிருதி திவஸ் பர் யோக் தபஸ்யா பக்தி கரனே கே லியே ஆயே ஹே. சுந்தர் வாதாவரண் கே பீச் மே பஹுத் அச்சே பாதலோ கி ரிம்ஜிம் கே பீச் மே ஆப்கி பக்தி ஹோ ரஹி ஹே. ட்ராமானுசார் சமய பிரமாண் பாப் தாதா ஹம் சப் பச்சோ கோ ब्रह्मा बाप समान और अपनी दादियों के समान यज्ञ रक्षक बनने की प्रेरणा देते हैं. आप सब जानते हो जिस दिन से बाबा का अवतरण हुआ उस दिन से रुद्र भगवान का ये यज्ञ स्थापित हुआ और उसकी पालना और वृद्धि करने के लिए ब्राह्मणों को निमित्त बनाया गया. ब्राह्मण बच्चे जो सच्चे और पवित्र हैं, शुद्ध और पवित्र हैं, उन सबके हाथ में इस यज्ञ को संभालने की, यज्ञ को बढ़ाने की जवाबदारी बाबा ने सौंपी. ये ज्ञान यज्ञ अनेक प्रकार की परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए, इस कलियुग को सतयुग में बदलने के लिए, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है. हद के यज्ञ तो आप सबने देखे होंगे, कुछ पूजा पाठ करके, शालिग्राम बना करके बहुत अच्छी तरह से पंडित लोग, ब्राह्मण लोग यज्ञ की स्थापना करते हैं. और ये वो यज्ञ अधिक से अधिक एक मास, दो मास, कई प्रकार की जब प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं पर अकाल आ जाता, सूखा पड़ जाता है, कहीं कोई बात बार बार परेशान करती है, तो उन परेशानियों को समाप्त करने के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ की रचना करते हैं. और उस यज्ञ के अंदर स्थूल रूप में कुछ तिल, जौ, घी अर्पित करके स्वाहा 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 का मंत्र पढ़ करके उस यज्ञ को सफल कराते हैं. बाबा ने इस विश्व के संकट को हटाने के लिए, इस नरकमयी कलियुगी दुनिया को स्वर्ग में बदलने के लिए ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की. और लगभग 80 वर्ष से निर्विघ्न रूप से यज्ञ की वृद्धि होती रही, बढ़ता रहा और आज अपने अंतिम चरण पर पहुंचा है. मैंने भी इस यज्ञ को अपनी आंखों से 45 वर्षों से देखा है. 71 से लेकर जब से मैं समर्पित हुआ, यज्ञ की संभाल करने की, यज्ञ की सेवा करने की बहुत अच्छी भाग्य कहें, सहयोग बाबा ने हम सबको स्नेह के साथ यज्ञ रक्षा की जवाबदारी दी. और इस कुमार जीवन में हर प्रकार से तन, मन, समय, संकल्प, श्वास, जो शक्तियां बाबा की देन वो यज्ञ में अर्पित की, ऐसे लगता है कि हमने बाबा के इस यज्ञ की दिल व जान से जो सेवाएं की वो यज्ञ पिता को प्रसन्न कर लिया, वो प्रसन्न हो गए तो और क्या चाहिए। और उनकी प्रसन्नता के कारण मेरा तो अनुभव ये कहता है कि जिसके ऊपर यज्ञ पिता और यज्ञ माता प्रसन्न हो जाएं, इनको दो नाम हम देते हैं। सुना होगा आपने, कल्प वृक्ष के तने में तपस्या के रूप में एक कपल मुनि और एक कामधेनु माँ, हमारे माता पिता, यज्ञ पिता और यज्ञ माता, जिनका ये यज्ञ है, जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की। शिव बाबा तो निराकार हैं, लेकिन साकार में ब्रह्मा बाबा जो कपल मुनि है और कामधेनु माँ जगदम्बा माँ है, उनके इस यज्ञ को जिन्होंने प्यार से संभाला, जिन्होंने इस यज्ञ की बहुत दिल से सेवा की, उनकी सब मन इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो गई। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति, ऐसा हम लोगों का इस ब्राह्मण जीवन का अनुभव है। सब कुछ बाबा ने दे दिया, सब प्राप्तियां करा दी। बैंक में देखते हैं पीछे मुड़ करके कि आज कोई संकल्प भी उठता है वो भी पूरा हो जाता है। इतना यज्ञ पिता यज्ञ माता प्रसन्न है। हम सब, आप सबको, चाहे आप कुमार हैं चाहे अधर कुमार हैं, दोनों का बड़ा अच्छा संगठन है। कुमार भाई हाथ उठाएंगे? वाह, बहुत बड़ी संख्या है। मैं समझता हूँ अधर कुमारों से भी ज्यादा है। अभी अधर कुमार हाथ उठाओ, पता ही नहीं चलता है, आधे आधे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमारी दादी जी को कहते थे कुमारों की कुमारिका है, कुमारों की कुमारिका है। और सचमुच इतनी बड़ी दिल, फ्राक दिल, खुली दिल, जो यज्ञ की इतनी वृद्धि हुई है। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए और दादी और दीदी की जोड़ी ने यज्ञ की बागडोर अपने हाथ में ली और इतने स्नेह से यज्ञ की पालना की, सेवा की, जो आज हम यज्ञ को फलता फूलता बढ़ता देख रहे हैं, वो हमारी दादियों की बड़ी दिल है। उनकी बड़ी दिल के आधार से, चाहे वो खिलाने पिलाने में कहें, स्थूल रीति से भी, यज्ञ के अंदर कोई भी बाबा के बच्चे आए, हमेशा कहती थी इनको अच्छा अच्छा भोजन मिलना चाहिए, अच्छा इनको आइसक्रीम खिलाई या नहीं खिलाई, बरसात पड़ गई इनको पकौड़ा खिलाओ, इनको हलवा खिलाओ। मुरली सुनाते सुनाते ही डायरेक्शन मिल जाता था, मुरली चल रही है, बीच में कहती थी भोली सुन रही हो, पांडव भवन की बात, भोली दादी हमारी भंडारी थी, तो क्लास के समय भंडारे में होती थी तो मुरली सुनाते सुनाते कहती थी, अरे इतनी अच्छी बरसात पड़ रही है, ठंडी ठंडी मौसम में गरम गरम अभी अभी हलवा बना के ले आओ। तो इतनी बड़ी दिल से, इतने बड़े प्यार से जब पालना मिलती है तो हर एक को आता है कि हम भी यज्ञ में कुछ भरपूर करें। और सचमुच उनकी बड़ी दिल के कारण हर ब्राह्मण आत्मा जो यहाँ आई, तन से मन से धन से सदा के लिए सहयोगी बन गई। यज्ञ के प्रति उनका इतना प्यार उमड़ने लगा कि यज्ञ हमारा है, क्योंकि बड़ों ने इतने प्यार से उनको पालना दी, उनकी संभाल की, उनको हर प्रकार की उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी की। तो इसलिए हमने देखा हमारी दादियों की पालना के आधार से आज ये यज्ञ इतना वृद्धि को प्राप्त हुआ है। और आप सब बाबा के यज्ञ स्नेही बच्चे हैं जो आज इतना बड़ा यज्ञ बिना किसी डोनेशन के, بنا کسی سے چندہ لیے ہوئے، بنا کوئی فیس رکھے ہوئے، آج اتنے بڑے بڑے استھان، ریٹریٹ سینٹر، بڑے سیوا کیندر، اتنا بڑا بےحد کا یگیہ بہت نروگن روپ سے چل رہا ہے۔ یہ آپ سب کی کمال ہے۔ گپت ریتی سے کہتے ہیں برہما بابا، ایک بات کہتے تھے، بچے گپت دان مہا پنیہ۔ بابا نے کبھی یہ وارنن نہیں کیا ہوگا کہ میں نے یگ میں اتنا دیا۔ آپ سب جانتے ہو کہ بابا کی ہی پراپرٹی جو تھی، ہیرے جواہرات کا بزنس تھا۔ بابا نے جب شیو بابا کا انوبھو کر لیا، اسی سمے سے نرنے لے لیا کہ مجھے ابھی ان ہیرے جواہرات کے پتھروں کا بزنس نہیں کرنا ہے، اب تو میں سچے رتنوں کا بزنس کروں گا۔ اور جس دن سے سنکلپ کیا، اسی دن سے اپنی ساری پراپرٹی جو بھی تھی کنیاؤں ماتاؤں کا ٹرسٹ بنا کر کے سمرپت کر دی، اور اتنا پیار سے یگیہ 14 سال تک نروگن روپ سے چلتا رہا۔ جو کوئی بھی پرکار کی پرابلم، 400 بہن بھائی یگیہ کے اندر سمرپت ہوئے اور سب کی پالنا ہوتی رہی۔ بابا کے ساتھ 2-3 پریوار اور بھی سمرپت ہوئے۔ چندرمنی دادی کا پتا جی سمرپت ہوا، سانتا منی دادی کا پتا جی سمرپت ہوا، ایسے 3-4 پریوار سمرپت ہوئے، اور اس کے آدھار سے پورا یگیہ 14 سال تک بہت اچھی طرح سے چلتا رہا۔ اس کے بعد جب آبو میں آئے تو بابا نے یہ جھاڑ کو ہلانا شروع کیا، یہ تو بچے سب یہیں پر بیٹھے رہیں گے، سیوا پر نہیں نکلیں گے، اس لیے بیگری پارٹ 1.5 سال کا پریکشا لی۔ اور اس 1.5-2 سال میں اتنی بڑی پریکشا آئی جو یگیہ کے اندر بالکل بیگری پارٹ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ان دادیوں کی محنت، تپسیا، تیاگ اور تپسیا کے بل سے انہوں نے پھر سے اس یگیہ کو آگے بڑھایا، اور اتنا تیاگ اور تپسیا تھی، آپ نے سنا ہوگا بابا کی کہانی کے اندر، دادیوں کی کہانی کے اندر، وہ سیوا کرنے جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے آلو ملتے تھے، وہ آلو خرید کر کے اس کو رسا بنا کر کے، نمک ڈال کر کے، اور روٹی کے ایسے چولہے پر بنا کے روٹی اور آلو کا رس کتنے دنوں تک کھا کر کے جو کچھ آتا تھا وہ یگ میں بھیج دیتے، یگیہ چلتا رہے، بابا کے یگیہ میں کوئی کمی نہ پڑے۔ بہت تیاگ کر کے، تپسیا کر کے دادیوں نے اس یگیہ کو جمایا، تھمایا۔ اور اس سمے تھوڑے سے بچے جو نکلے نئے نئے، انہوں نے بھی دادیوں کے تیاگ کے آدھار سے، ان کے بلیدان کے آدھار سے یگیہ کے سمیپ آئے اور دیکھا کہ یگیہ نئی دنیا کی استھاپنا کے لیے ہے، اس لیے انہوں نے بھی اپنا تن، من، دھن سب کچھ سفل کیا، اور پھر دھیرے دھیرے یگیہ کی وردھی ہوئی۔ میں آپ کو یگیہ کی کیا کہانی سناؤں، جب میں آیا تھا تو اس سمے کیول وہ پانڈو بھون میں چھوٹا سا ہسٹری ہال تھا، جہاں پر 100-125 بھائی بہنیں بیٹھ سکتے ہیں، اور 100-125 کی اگر پارٹی آ جاتی تھی تو ہم لوگ سب کلاس کے باہر ہوتے تھے اور اپنے سارے کمرے خالی کر کے پارٹیوں کو دے دیتے تھے۔ دادی کہتی تھی تم برانڈے میں سب سو جاؤ اور یہ پارٹی والوں کو کمرہ دے دو، تو ہم کہتے تھے دادی اتنی بڑی سیزن کیوں رکھی ہے، وہ 100-125 لوگوں کی اتنی بڑی سیزن ہوتی تھی، اور آج تو 25,000-30,000 بابا کے بچے آتے ہیں، کیسے آرام سے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کچھ ویوستھائیں مل جاتی ہیں۔ لیکن وہ یگیہ کا پرارمبھ تھا، شروعات تھی، کیسے دھیرے دھیرے وردھی ہوئی، اور ہم وردھی کو دیکھ رہے ہیں دیش اور ودیش میں، ہزاروں بابا کے بچے بہت گپت ریتی سے اپنا تن، من، دھن سفل کر رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اگر وہ بچے نہ ہوں تو اتنا بڑا یگیہ کیسے چلے گا، اور آپ میں بھی ہیں، ایسے نہیں سب سب تو نہیں ہیں، لیکن پرسنٹیج میں بہت سے بابا کے ایسے بچے ہیں جنہوں نے سیوا کیندر بنا کر کے دیا ہے، جو یگ کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں کہ کون سی چیز یگ کے اندر ضروری ہے. کوئی گیہوں بھیجتا ہے، کوئی چاول بھیجتا ہے، کوئی گڑ بھیجتا ہے، اور اتنا ماترا میں بھیجتا ہے جو لاکھوں ہزاروں لوگ پورا سال کھا سکیں، رہ سکیں. یہ سب کا بلیدان ہے. تو آج اتنے سارے بابا کے بچے جو یہاں آتے ہیں، سب کے اندر ہوتا ہے کہ میں بابا کے یگ میں کیا کروں، کس ریتی سے کروں، میرا بھی کچھ سفل ہو جائے. کبھی بھی کسی کو دیکھ کر کے پوچھ کر کے نہیں کرنا. کہیں پوچھنے لگتے ہیں، آپ نے کتنا کیا، آپ کیا کرتے ہو، بابا کہتا ہے اگر پوچھ لیا تو آدھے سے آدھا ختم ہو جائے گا. اس لیے بہت دل سے، جہاں سے ہم سب کی پالنا ہو رہی ہے، جہاں سے یگیہ پتا ہم سب کو مانو سے دیو بنا رہا ہے، جہاں پر ہم سب جان اسنان کر کے پاون پریاں بن رہے ہیں، ایسے یگ کی وردھی کرنا، یگ کا وستار کرنا، یگ کو نروگن رکھنا ہم سب کا دائتو ہے، ہم سب کا کرتویہ ہے. اس لیے بہت دھیان دو، جہاں سے بھی آپ سب آئے ہیں، یہ یگ ہمارا ہے. جب تک اپنے پن کی رگ نہیں ہوگی تب تک اس یگ کی سنبھال نہیں ہو سکتی ہے. جب اپنتو آتا ہے، یہ بہت بڑی وشیشتا ہے، میرا پن نہیں ہے، میرا پن ممتا کی نشانی ہے، لیکن اپنا پن ہے. میرا پن اور اپنا پن میں بھی انتر ہے. جہاں اپنا پن ہے وہاں پر کہیں بھی موہ ممتا نہیں ہے، بے حد میں ہے. تو ہماری دادیوں نے کبھی بھی میرا نہیں کہا، لیکن اپنا سمجھ کر کے بہت پیار سے اس کے سنبھال کے، اور کتنے بچوں کا تن من دھن سفل کرایا. آج بھی دادی جانکی جی کہتی ہیں، اتنی بڑی عمر میں بابا نے مجھے کیوں بٹھایا. دادی کی وشیشتا آپ سب جانتے ہو، دادی نے جس دن سے ودیش میں سیوائیں شروع کی، لندن کے اندر 74 میں دادی گئی، اور جاتے ہی دادی نے ایک نیم بنا لیا، بھنڈاری رکھی گئی، سیوائیں شروع کی گئی، اور پہلے دن سے ایک لکش بنایا کہ بھنڈاری کے اندر اگر 80 پاؤنڈ آئیں گے تو 40 پاؤنڈ یگیہ میں جائیں گے، پورا ہاف. ایسا انہوں نے بالکل نشچت کر لیا کہ کوئی بھی چیز جو یہاں لندن سینٹر پر آئے گی وہ آدھا تو یگیہ میں ضرور سفل کریں گے. اور آج تک بھی ان کے اندر یہ رہتا ہے کہ یگیہ میں کہیں پر بھی کوئی کمی نہ رہے. یہ ضرور دھیان جاتا ہے کہ ہم سب بہت ایکا نامی کے اوتار بنے. بابا نے ہم سب کو شروع سے پاٹھ پڑھایا کہ بہت ایکا نامی سے چلنا ہے، کم خرچ بالا نسین. سمجھتے ہو سر اس کا ارتھ؟ خرچے کم سے کم ہوں اور کام اچھے سے اچھا ہو، جتنا سمپل اتنا رائل. یہ بابا کے مہامنتر رہے ہیں، اور اسی مہامنتر کے آدھار سے بھلے آج وی آئی پی جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب پانڈو بھون میں راشٹرپتی کے آنے کا پروگرام بنا، پہلے پہلے بھارت کے راشٹرپتی کو آنے کا نمنترن دیا گیا، اور وہ گیانی جیر سنگھ جی تھے اس سمے. جب وہ آنے لگے تب دادی نے سوچا کہ اگر ان کو فریش ہونے کے لیے باتھ روم چاہیے، کمرہ چاہیے، تو پانڈو بھون میں ہے کوئی استھان نہیں تھا، ایک اچھا استھان نہیں تھا جس میں وہ ایک دو گھنٹہ ریسٹ کر سکیں، اور ان کی جو سیکورٹی تھی وہ چیک کرے بار بار، کہاں بٹھاؤ گے، کہاں کھلاؤ گے، کہاں پر فریش ہوں گے، ایک ایک چیز کی چیکنگ ہو رہی تھی پہلے سے، ایک دو ماس پہلے سے. تب دادی نے کہا نہیں، ان کے لیے ایسی ویوستھائیں ہمیں کرنی پڑیں گی. تب ایک بہت اچھا باتھ روم بنا، لفٹ لگی اوم شانتی بھون میں، ان کے کارن لگی. تو ایسے جب وی آئی پی جانے لگے، بے حد کی سیوائیں بڑھنے لگی، तो उनके लिए कुछ साधन बनाए गए, लेकिन दादियों ने कभी भी अपने प्रति कोई चीज यूज नहीं की। हम सबको भी बाबा ने यही सिखाया है कि बच्चे जो कुछ यज्ञ में आ रहा है वो विश्व कल्याण की सेवा के लिए है। पर्सनल कोई अपनी प्रॉपर्टी न समझे, पर्सनल कोई उस पर अपना अधिकार न जमाए, बहुत इकोनॉमी से कम खर्चे में यज्ञ को आगे बढ़ाना है। और उसी विधि के अनुसार एक नामी एकानामी और एकाग्रता के आधार से यज्ञ की वृद्धि हो रही है, और साथ साथ बड़ी दिल, बहुत फ्राक दिल। और दूसरा एक आधार जो मैंने देखा वो है बड़ों का विश्वास। कभी भी किसी के प्रति उन्होंने अविश्वास की दृष्टि नहीं रखी, पता नहीं ये इतना खर्चा कैसे होगा, कैसे करेगा, कहाँ से आएगा, नहीं, विश्वास बहुत रख। जब पहली पहली कॉन्फ्रेंस हुई, आपको मैं बताऊं, 83 में पहली कॉन्फ्रेंस यहाँ शुरू हुई माउंट आबू में, ओम शांति भवन बन के तैयार हुआ, 3000 सीट का हॉल बनाया गया और पांडव भवन में रहने की व्यवस्था केवल 500 की, विज्ञान भवन, सुखधाम ये सब बन गए थे उस समय। 500 लोग रहेंगे, सुखधाम भी नहीं बना था, विज्ञान भवन था, योग भवन था, तो 3000 लोगों को हमको बुलाना है। और इतना पैसा तो नहीं था जो सारे आबू के होटल बुक कर लें। हम लोगों की दादी ने मीटिंग बुलाई और बोला कि सारे आबू के होटल बुक कर लो, सब बुक कर दो, एक भी नहीं खाली छोड़, 3000 लोगों के लिए व्यवस्था करनी। और ठंडी के दिन फरवरी का मास, सारे होटल आबू के बुक कर लिए। आबू में कोई भी आता था तो उसको जगह नहीं मिलती थी, केवल ब्रह्मा कुमारी के सब। लास्ट में जब भुगतान हुआ, देने लगे पैसा सबका, तो दादी कहती है पता नहीं कहां से आया पैसा, सबका सब जो भी था सब दे दिया पैसा, चुकतू कर दिया। और लास्ट में कहती है मेरे पास कुछ बजट नहीं बचा, जितना आया उतना खर्चा हुआ, किसने दिया। और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जो ऐसे लगता था कि अभी इसी साल प्रत्यक्षता हो जाएगी, इतनी धूमधाम से अखबारों में, टीवी में, यूनाइटेड नेशन का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रॉबर्ट मुलर और कई वीवीआईपी उस कॉन्फ्रेंस में आए। बड़ी दिल से दादी ने खातरी की और सारे आप भारत के जितने ब्राह्मण थे खुला निमंत्रण दे दिया, आ जाओ। और वो 3000 की सभा जो थी वो देखने जैसी थी पहली कॉन्फ्रेंस में, पन और आबू में, वो भी ये ज्ञान सरोवर भी नहीं था, शांतिवन का तो नाम ही नहीं था। तो कैसे कैसे दादियों की बड़ी दिल से, फ्राक दिल से बाबा का यज्ञ वृद्धि को पाया है। और अपने बच्चों को, हम सबको यही प्रेरणा देती हैं कि एक भी पैसा निष्फल न जाए। संकल्प, श्वास, संपत्ति, ये आपका संगम का बहुत बड़ा खजाना है। हम सब एक गांठ बांध लें, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं हम सब का तन मन धन सब उसका है। किया है सबने हवाले, अर्पित किया है कि नहीं, आपका है। भक्ति के अंदर तो गया मूर्ति के आगे, तन मन धन सब तेरा, ना लागे कुछ मेरा। बाबा कहता मूर्ति ने तुम्हारी आवाज सुनी नहीं, मैंने तो सुन लिया, सुना है ना बाबा ने। तो किसने किसने अपना तन मन धन सब बाबा के हवाले किया है, बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं, सच्ची दिल से किया है। अगर तन तेरा है तो कुछ ना अपने आप से, कहीं भी गलत रास्ते की तरफ तो नहीं जाता है। इन कर्मेंद्रियों से कोई गलत काम नहीं हो सकता। अगर बाबा को हमने दे दिया, बाबा के यज्ञ में मैंने समर्पित कर दिया, बाबा ये तन तेरा है, तो बाबा कई बार अभी मुरलियों में समझा रहा है, इस समय की मुरलियों में संभाल करो, इसको अच्छा रखो, तंदुरुस्त रखो, लेकिन इसमें मोह ममता नहीं रखो, इसको कहीं भी गलत रास्ते पर जाने नहीं देना। इन कर्मेंद्रियों से कभी कोई गलत कर्म नहीं करना, क्योंकि बाबा का तन है। इस मंदिर को बड़ा शुद्ध बना करके रखो, इसमें बहुत श्रेष्ठ मूर्ति रहती है, आत्मा मूर्ति है और इस मंदिर में विराजमान है, तो जैसे मूर्ति की वैल्यू है ऐसे मंदिर की स्वच्छता की वैल्यू है। इसको साफ रखना, स्वच्छ रखना, समय पर एक्सरसाइज, समय पर भोजन, समय पर नींद, बैलेंस से चलाओ, ज्यादा कोई अति में न जाना। ये मन अगर उसका है तो विचार करना, सभी पूछना अपने आप से, इस मन के अंदर कोई ऐसे विकल्प, ऐसे नेगेटिव संकल्प, बुरे भले संकल्प, विकारी संकल्प तो नहीं आते हैं? अगर आते हैं तो क्या मैंने मन को समर्पित नहीं किया है? बाबा ये तेरा है, और बाबा कहता मन मना भव, इस मन को तू मेरे में लगा दे। अगर सचमुच समर्पित किया है तो ये एक भी व्यर्थ संकल्प इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करो। यज्ञ की सबसे बड़ी रक्षा यही है, मन के ऊपर बड़ा ध्यान देना। मन बड़ा चंचल है, इसको समर्पित कर दिया जिस दिन, उस दिन संपन्न बन जाएंगे। मन को समर्पण करना, मन में भी कोई इधर उधर के संकल्प विकल्प न चले, बाबा ये तेरा है, जैसे तू कहेगा वही संकल्प करेंगे, बस। इसके लिए श्रीमत की बाउंड्री खींच दो, ये श्रीमत की बाउंड्री बाबा ने दी है, यही सोचना है, इतना ही सोचना है, इसके बाहर नहीं सोचना है। जिस दिन अपने मन को बड़े अच्छे अच्छे संकल्प दे देंगे, उस दिन आप यज्ञ रक्षक बन जाएंगे, क्योंकि यज्ञ में विघ्न पड़ने का मूल कारण ये है कि हम बहुत साधारण और नेगेटिव संकल्प करने लगते हैं। अगर एक बहुत सुंदर सबका संगठन का एकमत संकल्प हो जाए, सब बहुत शुद्ध और पॉजिटिव संकल्प वाले एक क्लास के अंदर आने वाले, चाहे 20 भाई बहने हों, चाहे 10 ही हों, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे पॉजिटिव संकल्पों में रहते हैं तो वो स्थान एक बहुत सुरक्षित, अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए किला बन जाता है। कोई भी वहां व्यर्थ और नेगेटिव बात नहीं हो सकती। इसलिए यज्ञ रक्षक बच्चे, आप सब यज्ञ स्नेही और सहयोगी तो हो, उसका सर्टिफिकेट तो बाबा भी देता है, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ जो विस्तार हुआ है उसका कारण है यज्ञ स्नेही और सहयोगी बच्चे सब स्थानों पर हैं, तब इतना बड़ा विस्तार हुआ है। कहां बाबा के समय में अपना सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारीज का एक भी नहीं था, और कहां आज हजारों सेंटर्स बाबा के हो चुके हैं। तो सबके स्नेह सहयोग का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन अब बाबा क्या चाहता है कि मेरे बच्चे इस यज्ञ को एकदम ऐसा किला बना दें जो कहीं भी किसी स्थान पर भी व्यर्थ और माया का नामो निशान न रहे, व्यर्थ और नेगेटिव का नामो निशान न रहे, ये यज्ञ निर्विघ्न रहे, यज्ञ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यज्ञ में दुनिया के विघ्न खत्म होने लगे, दुनिया में जो विघ्न आ रहे हैं वो समाप्त होने लगे, तो यज्ञ के बच्चे ही यज्ञ रक्षक बन सकते हैं। और वो यज्ञ रक्षक बनने के लिए बहुत शुद्ध और पॉजिटिव अच्छे अच्छे विचार चाहिए, उसका ओरा चाहिए, उसका आभामंडल चाहिए। अगर आप सभी यहां पर आए हुए बाबा के बच्चे जिस भी स्थान से आए हैं वो संकल्प ले लें कि हम अपने सेवा स्थान को ऐसा सुंदर वातावरण बना करके निर्विघ्न बना देंगे, कोई भी विघ्न वहां प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि कई प्रकार की माया आजकल वातावरण के अंदर कई भटकती हुई आत्माएं हैं, कहीं कोई प्रकार की नेगेटिव वृत्ति वाली हैं, कोई स्वार्थी वृत्ति वाली हैं, कोई किस प्रकार से विघ्न रूप बनती हैं, और जहां पर हमारी मूल धारणाएं आती हैं, जहां पवित्रता की धारणा मूल रूप में आती है, अगर एक चलता है दूसरा नहीं चलता, एक मानता है दूसरा नहीं मानता, उस स्थान पर बहुत विघ्न आते हैं, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन यज्ञ सदा निर्विघ्न रहे, वो विघ्न ऐसे खत्म हो जाए, इससे कोई बड़ी बात नहीं, सब पार हो जाएगा। वो तभी होगा जब हम सब आंतरिक वृत्तियों से भी पवित्रता का व्रत ले लेंगे। बहुत अच्छे पवित्र वायुमंडल में हम रहें और अपने सेंटर के वायुमंडल को इतना पवित्र और शुद्ध बना दें जहां पर व्यक्त और व्यर्थ बाह्य मुक्ता की बातों का नामो निशान न हो। जिस स्थान पर आज भी मैं देखता हूं, पूरे देश और विदेश में भ्रमण करते हुए मैंने अनुभव किया है, जिस स्थान पर सदा योग का वातावरण रहता है, जिस स्थान पर बहुत पॉजिटिव वातावरण रहता है, वहां पर कोई विघ्न नहीं है। लेकिन अगर बार बार विघ्न आ रहे हैं तो उसका मूल कारण ये दिखाई देता, कहीं न कहीं लीकेज है, माया को कहीं न कहीं आने का गेट या वेंटिलेटर खुला हुआ है जहां से घुस जाती है। ध्यान देना, कोई भी लीकेज न रहे, और उसके लिए हम सब एक बहुत सुंदर पवित्र संकल्पों का आभा मंडल बना दें। जरा भी व्यर्थ और साधारण वार्तालाप कहीं भी न हो, बाह्य मुक्ता का वातावरण ही न हो। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अभी थोड़े दिन पहले रशिया गया था, एक सेवा केंद्र का वातावरण देख के मुझे इतना प्रभाव पड़ा। उस स्थान पर मैं बैठा जब योग में, तो मैंने कहा मुझे तो यहां भट्टी करने दो, इतना अच्छा शक्तिशाली वातावरण था। उस बहन ने देखा कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव बात ही नहीं, सब पॉजिटिव, सब अच्छा, सब अच्छा। सुबह से लेकर के शाम तक योग चलता रहता, योग की भट्टियां चलती रहती, योग का किला बना हुआ है। विदेश में, ऐसे देश में जहां सारी दुनिया के अंदर शराबी कबाबी लोग रहते, जहां एकदम नेगेटिव वातावरण, तनाव का वातावरण, उसके बीच में उस स्थान का एक सम पवित्र शुद्ध वातावरण बना करके कितनी आत्माएं खींच खींच करके आती हैं, शांति लेने के लिए, सुख लेने के लिए, प्यार लेने के लिए भाग भाग करके लोग आते हैं। हम अपने भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से आए हैं और सब जवाबदार हैं, कुमार हैं चाहे अधर कुमार हैं, लेकिन सब अपने बाबा के बच्चे, बालक सो मालिक हैं। एक बहुत सुंदर बैलेंस है हमारे जीवन का, हम बाबा के बालक भी हैं और मालिक भी हैं। ऐसा है कि कोई भी राय, कोई भी बात देने के लिए मालिक बन करके दी जाती है, लेकिन पूरी की गई या नहीं, मानी गई या नहीं, कहां तक प्रैक्टिकल की गई, उसके पीछे नहीं लगना है, बालक बन जाना। और जहां बालक और मालिकपन का बैलेंस है, वहां पर कभी भी टकराव की स्थिति नहीं बनती, वहां पर कभी मन मुटाव नहीं होता। अगर दो लोग आपस में टकराव और मन मुटाव में आते हैं तो वो स्थान बहुत नेगेटिव और भारी हो जाता है, वहां अनेक प्रकार के यज्ञ में विघ्न आने लगते हैं। इसलिए हम सब यज्ञ रक्षक बाबा के बच्चे इस बात का बहुत ध्यान दें कि जैसे हमारी दादियों ने हम सबको बहुत सम्मान दिया, बहुत मीठे बोल बोल करके, सम्मानजनक बोल बोल करके यज्ञ को इतना निर्विघ्न बनाया, इतना आगे बढ़ाया, ऐसे ही हम भी जिस स्थान पर हम जाते हैं, रहते हैं, एक दूसरे के प्रति इतनी शुभ भावनाएं, इतना सम्मानजनक आदरजनक व्यवहार, ताकि उस स्थान पर कोई भी नेगेटिव चर्चा न हो, इधर उधर की पर चर्चा न हो, परपंच की बातें न हो, तो आप यज्ञ रक्षक कहलाएंगे। अगर यज्ञ का किला मजबूत है, जैसे आपने देखा होगा जहां पर बहुत दुश्मनों के अटैक होते हैं, चाहे बॉर्डर पर ही देख लो, वहां पर बहुत ऊंची कांटों की ताल लगाई हुई है, और कांटों के तार के पास भी अगर आप चले जाएं तो कहते हैं आप इससे 10 फुट दूर रहो। मैं एक बार इस बॉर्डर पर गया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का यहाँ बॉर्डर है गुजरात में, राखी बांधने के लिए वहां गया था अपने फोर्स वालों को, तो जब मुझे दिखाने के लिए ले गए तो कहते 10 फुट दूर रहना यहाँ से। क्या भाई, क्या क्या यहाँ खतरा है? तो बोलते इसमें करंट बीच बीच में छोड़ी जाती है, और वो करंट के आजू बाजू कोई आएगा तो उसको झटका लगेगा, वो दूर फेंक देगी करंट। आप समझ सकते हो सिक्योरिटी के लिए, रक्षा के लिए कितने प्रयत्न किए जाते हैं फिर भी कहीं ना कहीं से उग्रवादी आ जाते हैं। बाबा भी अपने बच्चों को यही कहता है, बच्चे ये जो माया के उग्रवादी आ जाते हैं अंदर अंदर, कि आपने ऐसी करंट छोड़ी है, ऐसी तार लगाई है योग की करंट छोड़ दो उसके ऊपर, बहुत शुद्ध संकल्पों की, पवित्र संकल्पों की, यही योग की करंट है। ऐसे संकल्प रचो कि यहां कोई विकारी संकल्प वाला प्रवेश नहीं कर सकता, यहां कोई ऐसी चर्चा नहीं हो सकती, यहां ज्ञान योग के सिवाय और कुछ नहीं होगा। आप अपने घरों के वातावरण को भी ऐसा बहुत पॉजिटिव बना सकते हो, जहां पर कोई भी अशुद्ध आत्माएं ना आए, अशुद्ध चिंतन वाले ना आए, कोई धोखा देने वाले ना आए, कोई नुकसान पहुंचाने वाले ना आए। बन सकता है, लेकिन तब बनेगा जब आप वहां पर दिन रात अखंड योग का दीपक जला देंगे। बाबा ने यज्ञ के अंदर ब्राह्मण बच्चों से पहरा क्यों दिलवाया, आप सबको मालूम होगा, पहले शुरू में जब हम आए हैं तो दादियां पहरा देती थी, हमारे एक दो भाई थे वो पहरा देते थे, बड़े भाई दादा विश्वरतन पहरा देते थे। उसके बाद हम लोग आए तो हमने कहा दादा आप लोग क्यों पहरा देंगे, हम देंगे। लेकिन बाबा ने एक दिन इसका रहस्य सुनाया, यज्ञ रक्षक तो खुद बाबा ही है, कोई आएगा हम क्या उसकी रक्षा कर सकेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे जब रात को जागते हैं तो जागते हुए क्या करते हैं, योग का दीपक प्रज्वलित करके रखो, इसलिए पहरा रखा है। व्यर्थ बातें सुनने और देखने के लिए नहीं, नींद करने के लिए पहरा नहीं, योग करने के लिए पहरा है। तो कोई भी सेवा है, कोई भी ड्यूटी है, ये सदा ध्यान रहे कि अगर अखंड दीपक योग का जलता रहे, अखंड भट्टी हो, तो वहां पर कोई विघ्न ठहरेगा नहीं। तो यज्ञ रक्षक बच्चे एक पॉजिटिव संकल्प करते हैं, एक बहुत अच्छा वातावरण बना के रखते हैं, बहुत सम्मानजनक और नम्रता का प्रेम पूर्ण वातावरण अगर सेंटर पर है तो यज्ञ की रक्षा होती है, और अगर योग का और पवित्रता का किला मजबूत है तो यज्ञ रक्षक हैं। तो इसलिए हम सब बाबा के बच्चे जिस स्थान पर भी रहते हैं, चाहे आपके पास सेंटर की जवाबदारी नहीं भी है, आप अपने घर में रहते हैं, बहुत अच्छे घर के वातावरण को आप चार्ज कर सकते हैं, और वो चार्ज करने की विधि यही है कि उस स्थान पर कोई भी संसार समाचार की चर्चा नहीं होनी चाहिए, व्यर्थ की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हो रहा वो हो रहा, अगर वो नेगेटिव बातें व्यर्थ बातें चलती हैं तो उस स्थान पर कहीं पर भी कोई विघ्न आ सकता है। इसलिए हर स्थान को हम सबको निर्विघ्न बना करके यज्ञ रक्षक बनना है, हर सेवा केंद्र निर्विघ्न बन जाए, हर स्थान निर्विघ्न बन जाए, उसके लिए हम सबको तपस्या करनी है, बहुत अच्छे संकल्पों में रमण करना है, बहुत शुभ भावनाएं रखनी है, बहुत शुभ चिंतक का किला बनाना है, और उसी किला के आधार से आप देखेंगे कोई भी आसुरी शक्ति वहां प्रवेश नहीं हो सकती। तो तन और मन, और तीसरा है धन, जो कुछ बाबा ने दिया है ये उसकी दी हुई अमानत है। कुमारों के एक बहुत अच्छा बैलेंस हमारी दादी जी जब भट्टी कराती थी, अभी तो कुमारों की अलग भट्टी नहीं हो रही है, लेकिन जब भट्टी कराती थी तो एक बहुत अच्छा बैलेंस बताती थी, कुमार भाई हमारे ध्यान देंगे, प्रवृत्ति वालों के पास तो कई प्रकार की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए अलग प्रकार के डायरेक्शंस होते हैं, लेकिन जो कुमार कमा रहे हैं उनके लिए दादी कहती थी तुम अपनी कमाई का चार हिस्सा बना दो, और उस चार हिस्से में एक हिस्सा खुद के खर्चे पर लगाओ, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, किराए का कहीं मकान चाहिए, एक हिस्से में वो निकालो, दूसरे हिस्से को आई बेल के लिए, माना समय के लिए, कोई ऐसा समय आता है बड़ी बीमारी आ जाती है, कभी यज्ञ में कहीं कहीं सेवा में जरूरत पड़ जाती है, उसके लिए बैंक में जरूर रखो। आधा हिस्से में से अगर लौकिक जवाबदारियां हैं तो लौकिक को जरूर दो, जवाबदारी है तो, और उसका चौथा हिस्सा यज्ञ के लिए है, मधुबन यज्ञ के लिए है, बेहद यज्ञ के लिए है। कभी कभी दादी इसको पांच हिस्से में बांट देते थे। मान लो मकान बन रहा है, सेंटर का मकान बन रहा है, और आप सेंटर पर जहां पालना ले रहे हो, जहां आपकी दिन रात पढ़ाई और भोग मिल रहा है, सेवाएं ले रहे हो, वहां पर नहीं करते, यज्ञ में डायरेक्ट करते हो, तो दादी कहती थी नहीं, तुम अपने हिस्से को पांच भागों में बांट दो, एक स्वयं के लिए, एक बैंक के लिए, एक यज्ञ के लिए, एक लौकिक के लिए और एक सेंटर के लिए। तो अगर इसी प्रकार से आप अपने पैसे को बैलेंस से चलाएंगे तो ये पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। और ध्यान रखना, संगम पर इस एक एक कौड़ी की कीमत मुहर के बराबर है। ये सोने की मुहरें, उसके आगे कुछ भी नहीं है। चावल दाना बाबा की यज्ञ में देने से बाबा को रिटर्न के लिए महल देने पड़े हैं। भक्ति में गायन है, संगम पर बाबा के बच्चे, जो गरीब गरीब बच्चे हैं, पेट को पट्टी बांध करके यज्ञ में भेजते हैं। कैसे यज्ञ चलता है? सिर्फ पैसे वाले ही नहीं यज्ञ में पैसा दे रहे हैं, लेकिन बहुत बाबा के ऐसे बच्चे जो दिन रात मेहनत करके कमाई करते हैं। जब सुनते हैं मधुबन में मकान बन रहा है, जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, मैं एक कहानी सुनाता हूं प्रैक्टिकल की। ज्ञान सरोवर जब बन रहा था तो सबको एक डायरेक्शन गया था कि हर एक को एक रुपया निकालना है रोज, और उस समय शायद 1.5 लाख या 2 लाख बाबा के बच्चे थे, अभी तो 9 लाख से अधिक संख्या है। 1.5-2 लाख के बीच में डायरेक्शन था कि ज्ञान सरोवर को बनाना है, 1-1.5 साल के अंदर सबके भंडारी 1 रुपया रोज सबका आना चाहिए। जब कोई पूछता था कैसे बना रहे हो, तो दादी कहती थी हमारे 2 लाख बाबा के बच्चे रोज 1 रुपया निकालते हैं, हम 2 लाख रुपया तो खर्चा ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से ज्ञान सरोवर बना। लेकिन एक महाराष्ट्र में बहुत गरीब माता थी, वो झाड़ू पोछा करके पैसा कमाती थी। उसको पता चला वो मधुबन नहीं आ पाई, गरीब थी, इतना पैसा नहीं था जो मधुबन आए। उसने भी क्या किया, उस पैसे को गरीब बच्ची माता ने निकाल करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक अंगूठी खरीदी, और अंगूठी बना करके जब दीदी वहां की सेंटर इंचार्ज बहन आई तो दीदी को कहती है, दीदी आप मधुबन में ज्ञान सरोवर बन रहा है, मेरी एक ईंट जरूर लगा देना। क्या तेरी ईंट लगाऊं? तो उसने वो अंगूठी दीदी को दिया कि दादी को देना और कहना ज्ञान सरोवर में मेरी ईंट लग जाए। और मधुबन में जब वो आई दीदी और दादी के हाथ में अंगूठी दी, तो दादी को इतना नशा चढ़ा, इतनी खुशी हुई, दादी क्लास में लेकर के आई और वो अंगूठी पहन करके डांस किया कि देखो ये ज्ञान सरोवर कैसे बन रहा है। कितने गरीब गरीब बाबा के बच्चे, भोले बच्चे, सच्चे बच्चे, इनकी एक एक ईंट से इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना है। शांतिवन कैसे बना, मनमोहिनी वन कैसे बना, ये सब बाबा के बच्चों की देन है। सब बच्चे आराम से रहें, सुख से रहें। बाबा कहता मुझे थोड़ी महल बनाने हैं, मुझे थोड़ी कोई महल माड़ियां बना करके साथ ले जाना है, ये सब बच्चों के लिए है। और बच्चे आराम से रहें, बाबा को यही फिक्र रहती है। ब्रह्मा बाबा को कई बार मुरली में सुना होगा, बड़ी फिक्रात होती थी, इतने बच्चे आएंगे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ बैठेंगे। तो बाबा कहता था वेट एंड सी, ठहरो, यही है ना बाबा की मुरली, ठहरो बच्चे, सब हो जाएगा प्रबंध। तो आज हम देख रहे हैं साकार में बाबा के समय तो बहुत थोड़ा सा स्थान था, लेकिन बाबा अव्यक्त हुए और बाबा की जो अव्यक्त रूप में सेवाएं शुरू हुई उसके आधार से आज इतने बड़ी विस्तार को हम सब देख रहे हैं। अब विस्तार को संभालना, विस्तार को निर्विघ्न बनाना और निर्विघ्न रखना, ये सब हम सबकी जवाबदारी है। है जवाबदार, समझते हो? हैं सभी जवाबदार? अच्छा, तो आज इस दादी जी के स्मृति दिवस के निमित्त आप सब संकल्प लेना कि दादी जी जैसे आपने इस यज्ञ को बड़े दिल से विस्तार किया, बड़े दिल से बढ़ाया, हम सब भी आपके कदम पर कदम रखते हुए इस यज्ञ को सदा निर्विघ्न बनाएंगे और सदा इसकी वृद्धि में अपना तन मन धन समय श्वास और संकल्प जो आपने बाबा ने हमें ध्यान में दिया है, हमें दिया है, हमने तो बाबा को दे दिया, बाबा ने हमें रिटर्न किया है, बच्चे इसको रखो लेकिन एक भी पैसा व्यर्थ नहीं करना, एक भी मन के संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देना, इन शक्तियों को बचाना और बाबा के विश्व कल्याण के कार्य में लगाना, तो हम सब बाबा के बहुत अच्छे जवाबदार बच्चे बन करके दादी जी के कदमों पर कदम रख, बहुत बड़ी दिल से दादी जी जब ये हाल बना ना, पता कैसे बना, यहाँ पीछे कैंची भी नहीं थे और बाबा को यहाँ बुला लिया, बाबा आए देखा रहने की व्यवस्था नहीं, बाबा कहता बड़े बड़े हाल बना दो, रहने के लिए 100-100 रुपए, एक हाल के अंदर 110 भाई बहने, भाई 110 बहने एक हाल में रहती, इतने बड़े बड़े हाल बनवा दिए, पैसा तो था नहीं। धीरे धीरे बाबा के बच्चे बढ़ते गए और आज सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी जो हुई हैं वो सबके सहयोग से हुई हैं, हम सबके सहयोग से बाबा का यज्ञ चल रहा है, चलता रहेगा, डिग्रियां चढ़ती रहेंगी और बाबा आता रहेगा, हम सबकी पालना करता रहेगा। हम सभी अपने बहुत अच्छे पॉजिटिव विचारों से, बहुत शुभ संकल्पों से, कभी भी नहीं कहना ऐसा क्यों हो रहा, यहाँ ऐसे होता, वहां ऐसे होता, कहीं सुनी सुनाई बातें सुन करके अपने माथे को बहुत भारी कर लेते हैं, सुनो ही नहीं। अगर आपको कोई ऐसी वैसी बातें सुनाए ना, कह दो मेरे कोई नहीं सुनना, मैं बाबा के यज्ञ में जो करा वो मैंने सफल किया, बाबा की भंडारी में गया वो सफल हो गया, बाबा के यज्ञ में आया वो सफल हो गया, बाबा जाने बाबा का यज्ञ जाने। कभी भी साधारण संकल्प नहीं करो, यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बाबा दा इसमें तुम्हारा क्या जाता, वो बाबा जानता है। जब बाबा बैठा है, बाबा यज्ञ का रखवाला है, तो हम सब यज्ञ के बच्चे सिर्फ स्नेही सहयोगी बन करके अपने शुद्ध संकल्पों का, बहुत पॉजिटिव संकल्पों का, पवित्र संकल्पों का ओरा बनाएं। ऐसा ओरा बना दो, ऐसा आभा मंडल बन जाए, जो उस आभा मंडल में कोई भी आत्मा आए उसकी नेगेटिव वृत्तियां समाप्त हो जाएं, उसका सोचना भी बंद हो जाए। वो तभी होगा जब कोई भी एक भी नेगेटिव नहीं हो, एक भी व्यर्थ सोचने वाला न हो। तो हम सब बाबा के बच्चे शुद्ध संकल्पों में रमण करना सीख लें, अच्छे अच्छे संकल्पों में रहें, तो ये पूरा आभा मंडल ऐसा शक्तिशाली हो जाएगा जो यहाँ पर कोई भी अशुद्ध वृत्ति वाली, नेगेटिव वृत्ति वाली आत्माएं, चाहे वो भटकती हुई हैं चाहे साकार में हैं, कहीं भी प्रवेश नहीं हो सकती, कहीं भी अटैक नहीं कर सकती। ये किसकी जवाबदारी, हम सब की जवाबदारी है। तो आप सब यज्ञ रक्षक बाबा के बच्चे कैसे यज्ञ रक्षा करेंगे, बहुत एक नामी, एक बाबा दूसरा न कोई, बहुत निश्चय बुद्धि, बहुत विश्वास पात्र, बाबा हमारे में विश्वास रखे, ये मेरे बच्चे बहुत अच्छे योगी बच्चे हैं, पवित्र बच्चे हैं, तो ऐसा जब हम एग्जाम्पल बनेंगे तो बाबा हम सबको प्रसन्न होकर के हमारी सब मन इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी कर देगा, तो हर इच्छा हर संकल्प पूरा हो जाएगा, संकल्प उठेगा और सिद्ध हो जाएगा, तो ये यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला है। और हम सब बाबा को अपने यज्ञ पिता और यज्ञ माता को प्रसन्न करके मन इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। संगम पर अनुभव करो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मेरे इस ब्राह्मण जीवन में, सदा संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो यज्ञ बढ़ता जाएगा। जहाँ कथनी और करनी समान है, जहाँ सच्चाई और सफाई है, वहां पर यज्ञ के अंदर कोई विघ्न डाल ही नहीं सकता। अगर जरा भी उसमें हल्कापन है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, सच्चे और साफ नहीं है, वहां ही विघ्न आते हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे ऐसा बनकर अभी बाबा को क्या करें, बाबा की पालना का रिटर्न करें। बहुत अच्छी पालना हम सबको मिल रही है, तो ज्ञान योग की पालना का रिटर्न है अपनी बहुत श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति। ओम शांति।